الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، کل بات چل رہی تھی کہ ہم کسی بات کو، کسی خبر کو، کسی اطلاع کو یا اپنے کسی خیال کو تحقیق کیے بغیر نہ مانیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثما، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو. تو گمان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے بلا وجہ، بلا ثبوت کوئی اوپینین کسی کے بارے میں بنا لیں. دل میں ایک خیال آئے گا، اس کو ہم پکانے لگ جاتے ہیں، اتنا دہراتے ہیں اتنا دہراتے ہیں کہ ہماری پختہ رائے بن جاتی ہے. یہ جو گمان ہے یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکذب الحدیث ہے یہ، یعنی جب ہم کوئی رائے بناتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ کام اس نے اس وجہ سے کیا ہوگا، وہ جو بات اس نے کہی تھی، وہ کینے کی وجہ سے دشمنی، وہ میرا مجھے نیچا دکھانا چاہتا تھا، وہ میرے ساتھ یہ اس لیے کر رہا تھا کہ میں اس کا، وہ میں نے ایک بات کہی تھی اس کا بدلہ اس نے چکایا ہے. یہ جتنی بھی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں یہ سارے کے سارے گمان ہیں. اگر ان کا ثبوت مل جائے تو گمان نہیں رہے گا، لیکن جب ثبوت نہیں ہے تو اور جھوٹی بات کس کو کہتے ہیں؟ اسی بات کو تو جھوٹی بات کہتے ہیں کہ جو آپ نے بلا وجہ کہہ دی ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ وہ بات دوسرے کے بارے میں کہہ دیں. تو جتنے بھی ہم خیالات اپنے ذہن میں دوسروں کے بارے میں پکاتے ہیں، بناتے ہیں، پھر ان کو ٹٹولتے رہتے ہیں، کسی کی نیت طے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کام کا سبب طے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے وہ بات اس لیے کہی تھی، وہ عمل اس نے اس لیے کیا تھا، وہ جو اس نے میرا برتن توڑا تھا وہ اس لیے توڑا تھا کہ یہ اس کو میرا سیٹ پسند نہیں آیا اور اس نے اس کو نقصان پہنچا دیا ہے. یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے یا آپ کے اپنے نفس کے سکھائے ہوئے غلط سبب کی وجہ سے ایسا ہے. حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ایسا نہ ہو، اس کی نیت بالکل ایسی نہ ہو، اس کا خیال بھی نہ ہو اس کو کہ میں ایسا اس لیے کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ایک بری رائے بنا لی. جب ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے بنا لیتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے دل میں اس کے بارے میں برائی لے آتی ہے. مثلا میں، آپ میرے گھر میں آئے، آپ نے دروازہ کٹکھٹائے بغیر اندر آ گئے، تو میں نے آپ کے بارے میں خیال کیا کہ یہ کیا صاحب ہے، کیا شخص ہے یہ، بغیر دروازہ کٹکھٹائے آ گیا ہے. یہ ضرور میری کوئی عیب جوئی تلاش کر رہا تھا، کوئی میرا ضرور ایسی چیز تلاش کر رہا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ میری نظر میں آ جائے، یہ جاسوسی کر رہا تھا، اس کے تجسس لاحق تھا، یا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں آج کیا ہو رہا ہے. یہ پہلو جیسے ہی میرے ذہن میں آئے گا تو میں نے کیا کیا کہ شیطان کی اس بات کو مان لیا کہ آپ کا آنا درست آنا نہیں ہے. گمان کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کے بارے میں ایک غلط رائے، غلط سبب سے بلا وجہ منا لیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ میرے گھر میں آئے تو میں نے آپ کے بارے میں یہ خیال قائم کر لیا کہ کوئی بری نیت ہے، کوئی برا ارادہ ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور وجہ سے آئے ہوں. جب آپ کسی اور وجہ سے آئے ہیں تو اصل وجہ وہی ہے، جو میرے دل میں وجہ پیدا ہوئی ہے وہ اصل وجہ نہیں ہے. یعنی بعض اوقات ایک بات جو ہوئی ہوتی ہے اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ وہی اصل وجہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گمان پختہ رائے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پہلا خیال میرے دل میں آیا وہ برا آیا، اب میں نے اس برے خیال ہی کو آپ کے بارے میں یہ بنا لیا کہ آپ اسی وجہ سے یہ کام کیا تھا، اب اس خیال کی وجہ سے میرے دل میں آپ کے بارے میں بری رائے پیدا ہو گئی. یہ بری رائے پیدا ہو گئی کہ آپ نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا تھا، تو اب آپ کے بارے میں بلا ثبوت میری رائے غلط ہو گئی. جب میری رائے غلط ہو گئی تو جب آپ مجھ سے ملیں گے تو میں صحیح طریقے سے نہیں ملوں گا، کیونکہ میرے دل میں میل آ چکا ہوگا، میں آپ کے بارے میں پسندیدگی نہیں رکھتا آپ اپنے دل میں، تو جیسے ہی آپ مجھ سے ملیں گے تو میں ناگواری سے ملوں گا. اور اگر یہ باتیں पुख्ता होती चली जाए। अब एक गुमान किया, इसके ऊपर एक और गुमान कर लें, एक और गुमान कर लें, एक और गुमान कर लें, तो आपके बारे में मेरे दिल में ढेरों बुराइयां जमा हो जाएंगी और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि मैं आपसे दिल ही दिल में दूर होता चला जाऊंगा। फिर आपकी हमदर्दी मेरे दिल में नहीं रहेगी। आप तड़प रहे होंगे, मैं कहूंगा ड्रामा कर रहा है। आप रो रहे होंगे, मैं कहूंगा बहाने बना रहा है। आपको सच की तकलीफ होगी, हकीकत में आप तकलीफ में होंगे, लेकिन मैं कहूँ ये ऐसे ही करता रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत से गुमान पाल पाल के दिल में यह राय बना रखी है आपके बारे में कि आप ऐसा करते हैं। इसके नतीजे में बाज़कात हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि सगा भाई तड़प रहा होता है, भाई उसकी मदद को नहीं आते। वो अकेला जा रहा होता है किसी मुसीबत को सहने के लिए, लेकिन उसका कोई सहारा नहीं होता, हालांकि 10-12 भाई होते हैं। ये वजह है जिसकी वजह से गुमानों को हराम करा दिया गया है कि आप अपने दिल में गुमान ना पकाएं, बार बार अपने जहन में राय ना बनाएं कि आपने, मेरे भाई ने वो जो बात कही थी वो इस वजह से कही थी, वो बड़ा साजिशी है, बड़ा चालाक है, उसने बदला लेने के लिए मुझे कहा, मुझे जलील करने के लिए कहा। ये सारे आपके अपने ख्याल हैं, हकीकत में हो सकता है कुछ भी ना हो। एक दफा मेरे साथ ये मामला हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कर्ज मांगा और वो मैंने उसको टाइम बता दिया कि भी इस वक्त आके ले लेना। और मेरा एक और दोस्त उसी वक्त आ मौजूद हुआ जब मैं वो कर्ज लेने के लिए मेरे पास आया। अब उस मेरे जिसको मैंने कर्ज देना था, उस मेरे दोस्त ने समझा कि इसने जानबूझ के इसको बुलाया है कि गवाही रहे कि मैंने इसको पैसे दिए हैं। हालांकि मेरे हाशिए ख्याल में भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं ये कर्ज उसके सामने दूं, वो अचानक आ गया था। अब क्या हुआ कि वो कर्ज तो ले गया लेकिन मेरे साथ नाराज हो गया। अब मिला एक मौके पर, उसने अच्छे तरीके से सलाम दुआ भी नहीं की। मैंने उसे पूछा क्या हुआ है, तो उसके भाई ने मुझे बताया कि ये मामला हुआ था, आपने जब कर्ज दिया तो ये हरकत की आपने। मैंने कभी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो अचानक आ गया था। चुनाचे आप देखिए कि वाकया क्या हुआ कि एक दोस्त अचानक आने से मेरे बारे में मेरे दोस्त ने ये राय बना ली कि इसने जानबूझकर गवाही डालने के लिए, ताकि कोई गवाह रहे, या जलील करने के लिए मुझे सामने इसके कर्ज दिया। इस तरह के बेशुमार वाक्यात होते हैं कि करने वाले की कोई बुरी नीयत नहीं होती। बेशुमार जुमले ऐसे होते हैं कि कहने वाले की कोई बुरी नीयत नहीं होती। बेशुमार मजाक ऐसे होते हैं कि कहने वाले के हाँ कोई बुराई का इरादा नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बुरे मानी देखते हैं और बस उसके बारे में राय बना लेते हैं और दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हों के बारे में आता है कि वो कहा करते थे कि अगर किसी बात की जब तुम्हें सुनाई जाए या तुम कोई वाक्या देखो तो उसके 1000 वजूहात हों और उसमें से 999 मनफी हों, जिसके बुरे मानी निकल रहे हों, और एक दुरुस्त हो जिसके सही मानी निकल रहे हों, तो इस बात को मानो और 999 रद्द कर दो। हम क्या करते हैं कि 999 मुस्बत पहलू होते हैं उस बात के, एक मनफी होता है, हम उसको मान लेते हैं। इससे दुश्मनी की बुनियाद पड़ जाती है। हुआ कुछ भी नहीं होता, हकीकत में आपको गाली नहीं दी गई होती, हकीकत में आपका मजाक नहीं उड़ाया गया होता, लेकिन आप दिल ही दिल में ख्याल कर लेते हैं कि इसने वो जो बात कही थी वो मुझे चोट की थी, मुझे लगाई थी, मुझे सुनाने के लिए कही थी, जिसके नतीजे में आपने क्या किया कि अपने भाई के बारे में बिला वजह, बिला सबूत, जिसकी कोई दलील आपके पास नहीं है, कोई आपने तहकीक नहीं की है, कोई सबूत बहम नहीं पहुंचाया है, आपने एक राय बना ली। इसी के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे झूठी बात है जो तुम्हारे दिल में आ गई है, इससे बच के रहो, इससे पनाह मांगो। इसलिए कुरान मजीद ने भी फरमाया कि ला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, उस बात पे कभी ना चलो, उसके पीछे कभी ना पढ़ो, उसके पीछे गर्विदा कभी ना हो जाओ, उस बात को चिपक जाओ उसके साथ कि जिसका तुम्हारे पास इल्म ही नहीं है। ये चीज बुनियादी बुराई है कि हम अपने दिल में ख्याल पैदा करें। ये सूरह हुजरात में जब हुक्म दिया गया तो ये सूरह हुजरात उस मौके की है। जब हिजरत हो रही है, तो हिजरत के मौके पर, चूंकि एक इस्लामी मुआशरा वजूद में आने वाला था उसके बाद, हिजरत के बाद, तो आपको फरमाया गया कि मुसलमानों के अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। उनमें से एक ये भी है कि हम दूसरों के बारे में गुमान पैदा नहीं करेंगे, अपने दिल में बिला वजह आरा नहीं बनाएंगे। जब भी किसी के बारे में राय बनाई जाए, जब भी किसी के बारे में जहन में ख्याल लाया जाए, तो ये सोच लीजिए कि ये नापा तोला हुआ है या महज शैतान का वसवसा है, या महज आपके नफ्स की अपनी शरारत है, तो इसको तोल लीजिए। अगर आप इसको तोल के राय बनाएंगे तो सच्ची बात है कि बहुत सारी खराबियां हमारे मुआशरे में से खत्म हो जाएंगी। खुद हमारे बारे में भी दूसरे लोग ऐसा कर रहे होते हैं, हम दूसरों के बारे में कर रहे होते हैं, जिससे नाचाकियां, जिससे हमदर्दी का खात्मा, जिससे उंच का खात्मा। और बात का ये होता है कि मियां बीवी के दरमियान अगर ये सूरत पैदा हो जाए तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। माँ और बेटे के दरमियान ये सूरत पैदा हो जाए, गुमानों की कसरत पैदा हो जाए, तो वहां भी जुदाई हो जाती है। और बाप और बेटे के दरमियान, भाई और भाई के दरमियान, दोस्त और दोस्त के दरमियान ये दूरी पैदा कर देती है। कहानी में एक कहानी है कि एक इलाके में दो बहुत ही गहरे दोस्त, जिसको पंजाबी में लंगोटिया यार कहते हैं, इस किस्म के दोस्त रहते थे और 60-70 साल की दोस्ती थी उनकी। तो बुढ़ापे के दिनों में एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल चला गया। दूसरा दोस्त किसी चक्कर में फंसा हुआ था कि वो उसकी तीमारदारी के लिए नहीं जा सका। जो अस्पताल में दोस्त था वो 3 दिन तक उसका इंतजार करता रहा, आ जाएगा। किस्मत की बात है कि 3rd दिन उसको टाइम मिला और वो तीमारदारी के लिए पहुंच गया। तो वो दिली दिल में जो कि ख्याल कर रहा था कि ये सच्चा दोस्त नहीं है, सच्चा दोस्त होता तो मेरे पास फौरन आता। जैसे ही इसको खबर मिली थी भागा आता। उसने आकर कहा, यार मैं बहुत फंसा हुआ था, इतना फंसा हुआ था कि मैं अपने तुम जैसे अजीज दोस्त की खातिर यहां तीमारदारी के लिए नहीं आ सका, मुझे माफ कर। उसने कहा, नहीं तुम्हें आज भी तुम अपने काम से आए हो, क्योंकि उसने 3 दिन दिल में पुख्ता पका लिया हुआ था कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये अपने काम से आया है। इत्तफाक की बात यह है कि जो दोस्त ईमानदारी के लिए आया उसकी बच्ची छत से गिर के चोट लग गई और उसकी बीवी उसके बाद, यानी उस दोस्त के ईमानदारी के लिए निकल आने के बाद, उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंच गई और ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में पहुंच गई। अब उसके दोस्त ने जो बिस्तर पर लेटा हुआ था उसको कहा, देखा मैंने कहा था ना कि तुम अपने काम से आए हो, मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आए हो। तो इस एक वाक्य में जिसमें बदगुमानी ज्यादा है 60 साल दोस्ती खत्म कर दी। अब वो दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं, उनके घरों की दीवार मुश्तरका है, लेकिन वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हकीकत में बात दूसरी होती है। वो दोस्त वाकई तीमारदारी के लिए आया, वो वाकई फंसा हुआ था, लेकिन सूरत हाल क्या बनी कि दोस्त ने गुमान किया, गुमान करने के नतीजे में उसके दिन में एक राय बन गई हुई थी, और जब उसकी बीवी पीछे आई तो उसको यकीन हो गया कि ये अपने काम से आया था, मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया था। इस वाक्य से हमें सबक सीखना चाहिए कि बेशुमार बातें ऐसी होंगी, बेशुमार जुमले ऐसे होंगे, बेशुमार वाकयात ऐसे होंगे और बेशुमार ऐसी तीमारदारियां होंगी जो हकीकत में फंसे होने की वजह से आदमी तीमारदारी के लिए नहीं आ सका होगा, लेकिन हमने अपने गुमानों की रोशनी में उसके उस वाक्य को देखा होगा और उसको झूठ जाना होगा, जिसके बाद दोस्तियां खत्म हुई होंगी, रिश्ते टूटे होंगे और बरादरी और खानदान और मुआशरे में दरारें पड़ी होंगी। इससे हमें बचने के लिए खुदा का हुक्म यह है कि अपने दिलों में ज्यादा गुमान न पैदा किया करें, ताकि हम इस बुराई के बुरे अंजामों से बचे रहें। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।